الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. صدق الله. یہ جو دن چل رہے ہیں یہ قربانی کے دن ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تصوموا فی هذه الایام، ارے میری امت کے لوگوں ان دنوں میں روزے بھی مت رکھو. فانها ایام اکل و شرب و بعال، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں، ان کو کھانے اور پینے کے دن قرار دیا گیا. ان دنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ دعوت ہو رہی ہے، ضیافت ہے، کھانے پینے کے دن ان کو قرار دیا گیا اور روزہ رکھنا ان دنوں میں حرام ہے. ادھر آ گیا بھائی، جگہ پر کر لو، آگے آ گیا. اور یہ قربانی کی جو عبادت ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس پر صحابہ نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ اگر ہم قربانی کریں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قال بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. قربانی کے جانور کے بال ہوتے ہیں نا، اس کی کھال پر ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. تو صحابہ نے عرض کیا قالوا فاستوفوا یا رسول اللہ، کیا اون جس میں جو عام بکرے کی کھال ہوتی ہے، بکری کی کھال ہو، اس میں بال کم ہوتے ہیں، اون میں زیادہ ہوتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ کیا اون کے بالوں کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے؟ تو فرمایا قال بكل شعرۃ من الصوف حسنا، کہ ہاں اون کے بال ہو یا بکری کا بال ہو، سب کے بدلے میں ایک، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. اب ان بالوں کو کوئی شمار کر سکتا ہے؟ مراد یہ ہے بے شمار نیکیاں ہیں، بے شمار نیکیاں. اتنی بڑی عبادت ہے یہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. تو یعنی نماز جیسی عبادت کے ساتھ اس عبادت کا، قربانی کا ذکر کیا جانا، یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے. دیکھو بھائی ان کو اٹھا دو، سو رہے ہیں بھائی، وہ آنکھیں بند کر کے توجہ نہ ڈالو، آگے کھول کے توجہ ڈالو. تو یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اسی عبادت کے ساتھ خاص ہیں, اس کے بعد فضائل ایسے ہیں جو اسی کے ساتھ خاص ہیں اور دوسری عبادتوں میں یہ نہیں ملے گا. سب سے پہلی جو فضیلت ہے وہ فضیلت نوعیہ ہے. فضیلت نوعیہ, اگر کوئی قربانی کے بدلے میں کہہ دے کہ میں 20 رکعت نماز پڑھ لوں قربانی نہ کروں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. قربانی کے بدلے میں یہ کرے کہ صدقہ کر دوں, ایسا کرنے سے بھی قربانی کی عبادت ادا نہیں ہوگی. یا روزے رکھ لے تو روزہ رکھنا تو ویسے ہی جائز نہیں, ان دنوں میں الٹا گناہ ہو جائے گا. تو کوئی بھی عبادت اس کا بدل نہیں ہے, کوئی عبادت اس کا بدل نہیں ہے, یہ خود اپنا ہی بدل ہے. بس قربانی کی عبادت کا کوئی بدل نہیں. تو یہ پہلی فضیلت ہے, فضیلت نوعیہ جو اس قربانی کے اندر ہوتی ہے. دوسری فضیلت فضیلت زمانیہ. بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ زمانے کی وجہ سے ان میں برکت آ جاتی ہے. جیسے رمضان کے دن ہیں اور راتیں ہیں, تو دن اور رات تو وہی ہے جو روزانہ آتی ہے, رات بھی روز آ رہی ہے دن بھی روز آ رہا ہے, لیکن زمانہ کون سا آ گیا؟ رمضان کا. تو اب یہ دن عام دن نہیں رہے اور یہ راتیں عام راتیں نہیں رہی, یہ خاص راتیں بن گئی زمانے کی وجہ سے کہ رمضان کا موسم آ گیا, رمضان کا زمانہ آ گیا. اس کو فضیلت زمانیہ کہتے ہیں. یہ بھی قربانی کے اندر ہے, جس طرح رمضان میں ہے اسی طرح قربانی میں بھی یہ فضیلت زمانیہ موجود ہے کہ یہ قربانی آپ اور دنوں میں نہیں کر سکتے, یہ ابھی ہی کرنی پڑے گی انہی دنوں میں, انہی 3 دنوں میں, 10 ذی الحجہ, 11 اور 12 ذی الحجہ, انہی دنوں میں کرنی ہوگی, اس کے علاوہ اور دنوں میں نہیں. فضیلت زمانیہ اس کو حاصل. دوسری فضیلت یہ ہے, اور یہ وہ زمانہ 10 دن کا جو زمانہ ہے یہ وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت اور دنوں میں اتنی محبوب نہیں ہے جتنی ان 10 دنوں میں محبوب ہے, سب سے زیادہ انہی 10 دنوں میں محبوب ہے. اور اسی حدیث کی بنیاد پر بعض علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ راتیں تو راتوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو رمضان کی افضل ہیں, لیکن جہاں تک دنوں کا تعلق ہے تو وہ 10 ذی الحجہ کے دن افضل ہیں, رمضان سے بھی زیادہ افضل ہیں. علماء کی ایک باقاعدہ جماعت اس طرف گئی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 10 ذی الحجہ کے جو دن ہیں, پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک, یہ ایک روایت کے مطابق رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ فضیلت والے دن. تو فضیلت زمانیہ بھی قربانی کی عبادت میں موجود ہے. دو فضیلتیں ہو گئیں, اور نمبر 3 فضیلت مکانیہ. آج میں آپ کو انشاءاللہ جلدی چھٹی دینے کی کوشش کروں گا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا, عید الاضحیٰ کا موقع ہے, کسی کو جانا ہو اور کسی کو سکے بنانے ہو, تو میں کباب میں ہڈی نہیں بنوں گا. کسی کو کباب کھانے ہو, کباب بھی کھانے ہوں گے, میں بھی کباب میں ہڈی نہیں بنوں گا. تو تیسری فضیلت فضیلت مکانیہ ہے. یہ دن ہے ہی اس کے بھائی, حضور نے فرمایا کھانے پینے کے دن ہے, خوب کھاؤ پیو اور روزہ بھی نہیں رکھو, روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, اگر کوئی کھانے پینے کی اس نے ترتیب بنا رکھی ہے تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے, یہی سمجھ کے کرے اور ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو تیسری فضیلت فضیلت مکانیہ ہے. कि बात जगह ऐसी होती हैं कि वहां वही इबादत जो आप कहीं और कर रहे हैं वो उस मकान उस जगह पे कर लें तो उसकी फजीलत बढ़ जाती है। अब नमाज हमने यहाँ पढ़ी, यही नमाज अगर बैतुल्लाह में पढ़ी जाए तो 1,00,000 नमाजों का सवाल है। नमाज तो वही मगरिब की है, नमाज तो वही है ना मगरिब की, मगर बैतुल्लाह में पढ़ी, मकान अलग है, यहाँ ये मकान अलग है, वो अलग है, फजीलत मकानियां हासिल है बैतुल्लाह को, तो वहाँ 1,00,000 नमाजों का सवाल है। मस्जिद नबी में पढ़ी तो 50,000 नमाजों का सवाल है। ये इसको फजीलत मकानियां कहते हैं। तो इबादत तो वही है, वो कहीं किसी और जगह की तो वो सवाब नहीं है, लेकिन किसी खास जगह पर जाके की तो उसका सवाब बहुत बढ़ जाता है। इसको फजीलत मकानियां कहते हैं। ये भी ये फजीलत भी कुर्बानी की इबादत में मौजूद है। इसको समझने के लिए एक बात समझाता हूं, पहले इसकी तमहीद समझिए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज के भी दिन होते हैं ना, ये कुर्बानी के दिन भी हैं, हज के भी दिन है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हाजी लब्बैक कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, ये तस्बीह ये लब्बैक जब कहते हैं तो उनके जो करीब तरीन दरख्त होते हैं और पत्थर होते हैं और चट्टाने होती हैं और ठीकरे होते हैं वो भी इसको सुनते हैं और वो भी हाजी के साथ साथ लब्बैक पढ़ते हैं। आप समझे इस बात, फरमाया कि वहां उसके हाजी के करीब तरीन जो दरख्त हैं, पत्थर हैं, ठीकरे हैं, चट्टाने हैं, दरख्त हैं, वो सब मिलकर हाजी के साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ने लग जाते हैं। उनके साथ जब वो पढ़ते हैं तो उनके करीब तरीन पत्थर और दरख्त और चट्टाने वो पढ़ने लगती हैं, और फिर वो पढ़ते हैं तो उनके करीब तरीन, यहां तक के हत्ता तंतही الارض من ها هنا و ها هنا, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यहां तक के ये सिलसिला ऐसा चलता है, शुरू होता है तो कि करीब उसके करीब तरीन, यहां तक के हुजूर ने फरमाया हत्ता तंतही الارض من ها هنا و ها هنا, यहां तक के जमीन इख्तिताम को पहुंच जाती है इधर से भी और उधर से भी, यानी पूरी जमीन पूरी रूए जमीन हरम के हुक्म में आ जाती है। आप समझ रहे हैं, हज के दिनों में ये खास फजीलत है, इन दिनों की अलग फजीलत है कि पूरी रूए जमीन जब हाजी लब्बैक पढ़ना शुरू करते हैं तो उनके करीब पत्थर दरख्त पढ़ते हैं, फिर उसके करीब पत्थर और दरख्त पढ़ते हैं, यहां तक के वो सिलसिला पूरी जमीन में फैलता है। और हुजूर ने फरमाया इधर से उधर से सब जगह से पूरी जमीन में ये सिलसिला फैल जाता है, मतलब यह है कि पूरी जमीन हरम के हुक्म में आ जाती है। इसकी मिसाल यूं समझिए, एक मिसाल से समझाता हूं, शरीयत के ही एक मसले की मिसाल देता हूं। नमाज मस्जिद में शुरू हुई, यहां से सफे बनती गई, पीछे लोग आते गए, मस्जिद खत्म हो गई। मस्जिद की हुदूद कहां तक है, ये जो जहां मोज़ाइक है ना वहां तक है, ये टाइल मस्जिद से बाहर है, ये टाइलिंग जहां है ना ये मस्जिद से बाहर है। अब जो लोग आए, ये जगह पूरी हो चुकी मस्जिद की, लेकिन सफे बनती गई, वो गेट तक चली गई, वो भी भर गई, मैदान में चली गई, इधर चली गई रोड पर, तो जितने भी लोग मस्जिद से अंदर भी पढ़ रहे हैं बाहर भी पढ़ रहे हैं, मगर जितने लोग चूंकि वो सफों साथ मिली हुई है, एक सफ दूसरी सफ और सफों का सिलसिला चल रहा है, कहीं से इनकता नहीं आया सफों में, लिहाजा सारे नमाजियों को अगर के मस्जिद से बाहर नमाज पढ़ रहे हैं, बाद नमाजी बहुत से नमाजी, मगर मस्जिद का ही सवाब मिलेगा। तो उस सूरत में वो पूरी जमीन जहां पर नमाजी नमाज पढ़ रहे हो, मगर सिलसिला क्योंकि मस्जिद से शुरू हुआ है तो वो पूरी जमीन हकीकतन तो मस्जिद नहीं है, वो मैदान और ये रोड, मगर हुक्मन वो मस्जिद के हुक्म में आ जाता है। आप समझे इस बात को, لہذا بالکل اسی طریقے سے لبیک کا معاملہ ہے. جب حاجی لبیک کہتے ہیں سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پوری روئے زمین حرم کے حکم میں آ جاتی ہے. یہ بڑے مبارک لمحات ہوتے ہیں. یہ بڑے وارے بھائی ہم کیا کریں, ہماری وہ آنکھیں نہیں ہیں, ہماری وہ آنکھیں نہیں ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ تم میں سے جس کا قربانی کا ارادہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی مونچھیں اور بال وغیرہ نہ تراشے, ناخن نہ تراشے. کیوں نہ تراشے؟ ارے بھائی حج کے دنوں میں پوری زمین حرم کے حکم میں آ جاتی ہے. تم بھی حرم میں رہنے والے حاجی جو احرام میں ہیں وہ اپنے بال نہیں تراش سکتے, ناخن نہیں تراش سکتے. تم ان کی حلیہ اختیار کر لو, ان کی تھوڑی سی شباہت اختیار کر لو, کیونکہ پوری زمین حرم کے حکم میں ہے. جو رحمت ان پر برس رہی ہے وہی تم پر برس جائے گی. یا تم تھوڑی دیر سے آئے ہو مسجد سے باہر, تو میں صف تو مسجد سے ہی چل رہی ہے, سلسلہ چل رہا ہے, مگر صف میں آ کے جڑ گئے, جہاں ٹائل ہے وہاں پر جڑ گئے, امام یہاں پر ہے, نمازی صفے وہاں تک بنتی چلی گئی, میدان تک چلی گئی, مگر کیونکہ تم صفوں سے جڑے ہوئے ہو, ایک صف دوسری صف تیسری, لہذا جو رحمت یہاں مسجد کے نمازیوں پر برس رہی ہے وہی تم پہ برسے گی. تو پوری جگہ مسجد کے حکم میں آ جاتی ہے اس وقت, اگر مسجد سے باہر بھی صفے پہنچ جائیں سب کو وہی ثواب ملتا ہے. لہذا کیونکہ حاجی لبیک کہتے ہیں ان کی لبیک پر سارے درخت چٹانے پہاڑ ٹھیکرے سب ان کے ساتھ لبیک کہنا شروع کرتے ہیں, یہاں تک کہ پوری یہ دائرہ پھیلتا ہے, دائرہ بنتا ہے اور پھیلتا ہے, بنتا ہے اور پھیلتا ہے, اور پوری زمین کے کناروں تک پہنچ جاتا ہے. تو پوری زمین حرم کے حکم میں آ گئی. لہذا اس وقت اس زمانے میں اپنے بال وغیرہ نہ کراتے تو آپ حاجیوں سے مشابہت ہو گئی. آپ بھی گویا حرم کے حاجیوں پر جو رحمت برس رہی ہے وہی آپ پر برس جائے گی مشابہت کی وجہ سے. تو فضیلت مکانیاں بھی قربانی کو حاصل ہے کہ جب ان دنوں میں آپ نے قربانی کی, پوری زمین حرم کے حکم میں ہے, آپ کی بھی مشابہت ہو گئی حرم کے حاجیوں کے ساتھ. بڑا ثواب ملنے کی امید ہے, فضیلت مکانیاں بھی حاصل ہے. تو کتنی ہو گئی؟ تین ہو گئی, فضیلت نوعیہ, فضیلت زمانیہ اور فضیلت مکانیہ, اور چوتھی فضیلت فضیلت بانی. بانی کے اعتبار سے فضیلت, دیکھیے اس کی تفصیل یوں سمجھیے کہ بعض اوقات اس کوئی عمل اس کا بانی مخلوق میں سے کوئی ہوتا ہے مگر اللہ کو پسند آ جاتا ہے وہ عمل, تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قیامت تک کے لیے مثال بنا دیتے ہیں, اس عمل کو جاری رکھواتے ہیں. حضرت حاجرہ نبی تھی نہیں, مگر ان کا عمل مخلوق تھی, مگر ان کا عمل پسند آ گیا اللہ کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے ہیں بغیر آب و بیاہ کی وادی میں, بغیر کوئی وہاں پہ سبزہ نہیں, گھاس نہیں, کچھ نہیں, لق و دق صحرا, تھوڑے سے کھجور تھے اور کچھ پانی تھا, وہ کب تک چل سکتا تھا؟ پوچھا, جواب دینے کی بھی اجازت نہیں تھی, اشارے سے کہ آپ نے یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں, اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں. آپ پہلے تو یوں پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس طرح کیوں کر رہے ہیں, تو جواب نہیں دیا. آخر میں فرمایا کہ کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو سر کا اشارہ فرمایا کہ ہاں, اذن لا یبیعنا, سر کا اشارہ. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ یاد آ گیا, مدراس میں ایک مدرس بھیجا, مدراس میں پڑھانے کے لیے وہاں سے تقاضا آیا تھا, بھیج دیا. انہوں نے بڑی محنت سے सबक पढ़ाया, फिर तलबा से पूछा भाई समझ में आ गया, तो सब कह रहे हैं। उनको बड़ी हैरत हुई, फिर उन्होंने सबक दोहराया, फिर पूछा भाई समझ में आ गया, उन्होंने फिर यूं ही कहा। तो चंद दिन ऐसे गुजरे, तो एक दिन उन्होंने कहा भाई मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मदरसे के जिम्मेदारों ने कहा कि भाई क्या बात हो गई, खैरियत तो है? कहने लगे भाई मैं ये सबक मैं मेहनत से पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ और पूछता हूँ कि भाई समझ में आ गया, तो कहते हैं यूं इशारा कर दे, तो वो हंस पड़े वहां के जो जिम्मेदार थे। कहने लगे हमारे यहाँ मद्रास में जो इस बात का इशारा होता है ना हाँ करना, वो ऐसी की जाती है, और जब ना करनी होती है तो वो यूं करते, उल्टा वहां उल्टा है हमारे यहाँ। तो फिर वो रुके तो फजीलत बानी, बानी के एतबार से भी फजीलत हासिल है। हाँ मैं ये अर्ज कर रहा था कि कोई मखलूक में से किसी का अमल अल्लाह को पसंद आ जाता है, उसके बानी बुनियाद रखने वाले मखलूक में से कोई लोग होते हैं, मगर वो पसंद आ जाता है। जैसे हजरत हाजरा, उनका अमल पानी खत्म हो गया, खजूर खत्म हुए, अब वो सफा से लेकर मरवा तक चक्कर लगा रही है और देख रही है घाट के कि कोई काफिला है तो उस पर नजर पड़ जाए, उससे कुछ खाने पीने की चीज मांग ले, पानी ले ले। हजरत इस्माइल अलैहि सलाम रो रहे हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं प्यास की वजह से, बुरा हाल, छोटे से बच्चे, माँ बाप अपनी तकलीफ तो बर्दाश्त कर लेते हैं, बच्चे की तकलीफ नहीं देखी जाती। ये दौड़ना हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की वजह से था, अब वो दौड़ रही है, पहले सफा पर आ रही है और फिर मरवा पे, और सफा के निशानात तो आज भी बाकी है, वो चट्टान है वो आज भी उन्होंने उसको कवर नहीं किया, बिल्कुल बाकी है, बिल्कुल मरवा को तो बिल्कुल टाइल लगा दिए हैं, अगरचे टीला आज भी मौजूद है, चढ़ाई मौजूद है, मगर मरवा तो सफा तो बिल्कुल अच्छी तरह मौजूद है, उसकी जो चट्टान है वो आज तक मौजूद है। उस पर चढ़ के और वो देखती थी वहां कि कोई काफिला आ रहा हो, तो भाई अल्लाह को ये अमल पसंद आया कि नहीं? फिर अल्लाह एक एक हद है पर जब सात चक्कर पूरे हो गए, सात चक्कर पूरे हो गए, सात का अदद अल्लाह को इसीलिए बहुत महबूब है। मैं जब हिफ करता था तो मैंने तलबा से कहा भाई देखो सात मरतबा आयत को पढ़ो, इंशाल्लाह याद हो जाएगी। अल्लाह ने मेरे दिल में डाली थी ये बात, और तलबा पढ़ते थे कहने यार तेरी तरकीब बहुत अच्छी है तो मेरे साथ जो तलबा थे उनको मैंने समझाया, तो मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, मैं चार मरतबा देख के पढ़ता हूँ और तीन मरतबा बगैर देखे पढ़ता हूँ, फिर उस आयत को फिर याद हो जाती है। तुम भी यही करो, सात का आदत पूरा करो, देखिए आसमान कितने हैं, अरे भाई बोलिए, कुरान की मंजिलें कितनी हैं, हफ्ते के दिन कितने हैं, ये दिन और महीने अल्लाह ने बनाए भाई, और सवाब के चक्कर कितने हैं, जमीनें भी साथ हैं, जमीन के तबकात भी साथ हैं, तो सात का आदत अल्लाह को बहुत पसंद है। जब ये सात चक्कर पूरे हो, सही के चक्कर भी सात, जब ये सात का आदत पूरा हुआ है तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर अपने अल्लाह के हुक्म से अपना पांव मारा, अपनी एड़ी मारी जमीन पर, उसी जगह जहां हजरत इस्माइल की एड़ियां लग रही थी, और वहां से जो पानी जारी हुआ है वो आज तक जारी है। अब तो वो कुआं बंद कर दिया, मैंने खुद नीचे जाकर देखा वहां पर, वो खुद मैंने अपनी आंखों से, इतना मोटा पाइप स्टील का और एकदम पानी, अब उसकी धार कितनी मोटी होगी आप बताइए, उस पाइप में, वो स्टील का पाइप था, उस वो एक मोटी धार हर वक्त निकल रही है और एक निशान वहां लगा हुआ है, उससे नीचे पानी जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा। अरे भाई कुछ तो कम हो जाए, नहीं कम हो रहा। अल्लाह और वो कोई बारिशें भी नहीं होती मक्का मुकर्रमा में, वो कभी हो गई हो गई, नहीं हुई तो हुई ही नहीं, सहरा का इलाका है वो। फिर कुछ अरसे पहले तजर्बा किया गया, मक्का मुकर्रमा के मस्जिदुल हराम के गिर्द जो कुएं हैं उनमें ऐसा केमिकल डाला गया जो फैलता है नीचे, एक कुएं से दूसरे कुएं तक तो वो केमिकल का असर पहुंचा, उसके पानी दूसरा पानी निकाला गया, उधर से निकाला तो केमिकल का असर मौजूद था, मगर जमजम के ऊपर कोई असर नहीं आया। मालूम हुआ अल्लाह की तरफ से खास हिफाजत। माँ उ जमजम लिमा शुरीबा लहू, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमजम का पानी, माए जमजम, ये जिस हाजत को दिल में रखते हुए पिया जाए वो पूरी हो जाती है। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी जाने और माने दुआ फरमाया करते थे। अल्लाहुम्मा जमजम पीकर ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ वरिज़्कन वासिआ वशिफाअन मिन कुल्ली दा। ए अल्लाह, मैं आपसे इल्म नाफिया मांगता हूँ, वुसअत के साथ रिज़्क मांगता हूँ, बातनी भी रिज़्क और ज़ाहिरी रिज़्क भी, दोनों मुराद हैं इससे। वशिफाअन मिन कुल्ली दा, और हर बीमारी से शिफा मांगता हूँ, चाहे वो रूहानी बीमारी हो, चाहे वो ज़ाहिरी बीमारी हो, जिस्म की बीमारी हो या दिल की बीमारी हो, सब बीमारियों से शिफा मांगता हूँ। ये बड़ी जामे और माने दुआ है, यही पढ़नी चाहिए जमजम पीने के बाद। और उलमा फरमाते हैं कि जमजम आबे कौसर से भी अफजल है। उसकी वजह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चार मरतबा शक्के सदर हुआ है, चार मरतबा आपके सीने को चाक करके दिल को निकाला गया और धोया गया अल्लाह के हुक्म से, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने धोया, चारों मरतबा जमजम से धोया गया। और महबूब के लिए आला तरीन चीज का इंतखाब होता है, अगर कौसर जमजम से अफजल होता तो कौसर का इंतखाब किया जाता। ये वो नुक्ता है जिसकी वजह से आबे जमजम आबे कौसर से अफजल है जो अल्लाह ताला ने हमें दे रखा है। क्यों भाई, हम पीते हैं? जब हाजी आते हैं तो हम पीते हैं कि नहीं पीते? ये किसकी कुर्बानियों का नतीजा है, जरा ये तो सोचें। किस बच्चे ने वहां एरिया रगड़ी, प्यास बर्दाश्त की और उसकी माँ ने साथ चक्कर लगाए, फिर अल्लाह ने कैसा फैज जारी किया, कैसा फैज जारी किया कि रहती दुनिया तक वो बाकी है। तो अल्लाह ताला ने हजरत हाजरा के इस खेल को ता कयामत जब तक उमरा होता रहे, जब तक हज होता रहे, करो वरना हज तुम्हारा नाकिस है, उमरा नाकिस है, करो इसको सही को। ये फजीलत बानी के एतबार से है। बानी कौन थी? हजरत हाजरा थी। तो कुर्बानी का जो अमल है उसमें भी बानी की फजीलत हासिल है, और वो बानी है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और उनका अमल था अपने बेटे को ज़िबा करना, अपने बेटे को ज़िबा करना। कोई कहे उन्होंने बेटा तो ज़िबा नहीं किया, बेटा तो ज़िबा नहीं किया, तो मैं उसका जवाब ये देता हूं कि ज़िबा की तारीफ ये है, देखो ज़िबा की तारीफ सुन लो आज। ज़िबा किसको कहते हैं? इमरारु सिक्कीन अलल हुलकूम, ये ज़िबा की तारीफ है। जाने और माने, छुरी को गले पर फेरना, इसको ज़िबा करना कहते हैं, छुरी को गले पर फेरना। तो भाई ये तो पाया गया था, ज़िबा की तारीफ पाई गई, क्योंकि फेरते रहे गला नहीं कटा, उस ज़िबा का असर जाहिर नहीं हुआ, यानी कटना गले का वो जाहिर नहीं हुआ, छुरी तो फेरी गई और ज़िबा की तारीफ ही यही है। बस मालूम हुआ उन्होंने तो अपने बेटे को अपनी दानिश में ज़िबा कर दिया था, वो तो अल्लाह ताला ने दुम्बा उतारा और उस पर वो छुरी फिरी थी। वरना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही सोचकर छुरी चलाते रहे कि मैं अपने बेटे की गर्दन पे चला रहा हूँ। तो हम उसी की मुशाबहत में जब ये अमल करेंगे तो हमें भी वही सवाब मिलेगा, गोया कि हमने अपने बेटे के गले पर, महबूब बेटे के गले पर छुरी चलाई और उसको अल्लाह के लिए कुर्बान किया। उस कुर्बानी पर जो सवाब मिले वही हमें भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि महबूब से मुशाबहत हो गई, बानी से मुशाबहत हो गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अमल से मुशाबहत हो गई। قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो हुजूर फरमाते हैं मेरी इत्तेबा करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेंगे। और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमा देंगे। ये है मुशाबहत का इनाम कि महबूबियत मिल जाती है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बानी है इस फेल के, इस इबादत के बुनियाद रखने वाले वही हैं, लिहाजा उनसे मुशाबहत हो गई कि हमने भी गले पर छुरी चला दी जानवर के, ये फजीलत भी इसको हासिल है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतबईन में हमारा शुमार हो जाएगा, मिल्लत इब्राहिम में हमारा शुमार हो जाएगा। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, हमारी तो मिल्लत ही मिल्लत इब्राहिमी है। अल्लाह ताला ने हमें मिल्लत इब्राहिमी पर पैदा फरमाया है। इस अमल के करने से हम पूरा सबूत फराहम करेंगे कि हम मिल्लत इब्राहिमी के पैरोकार हैं। तो ये चार फजीलतें हुई और पांचवी फजीलत फजीलत गाइया है। फजीलत गाइया गर्ज व गायत वाली फजीलत, वो दो तरह से है, एक दुनिया में और एक आखिरत में। दुनिया में किस तरह के, देखिए अगर कोई शख्स कुर्बानी करे और कुर्बानी की एक बोटी भी किसी को ना दे, सारा का सारा जानवर की का गोश्त, गाय का गोश्त हो, ऊंट का हो, बकरे का हो, सब अपने डीप फ्रीजर खरीदे और उसमें भर ले, एक बोटी किसी को ना दे, सब का सब खुद इस्तेमाल करे, अपने घर वालों पर इस्तेमाल करे, ये अमल जायज है। उसके सर पर कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। हाँ बेहतर है कि तकसीम कर दे गुराबा में अपने रिश्तेदारों में, लेकिन अगर किसी ने ऐसा नहीं किया, सारा गोश्त खुद अपने पास रख लिया, तो ये बिल्कुल जायज है, कोई गुनाह नहीं। और इस लिहाज से ये कुर्बानी की अजीब इबादत है, ये अजीब इबादत है। देखें और भी तो इबादतें हैं जिनमें माल खर्च होता है, मगर वो इबादत उस वक्त कबूल होगी माल की कि जब वो आपकी मिल्क से निकल गया, आपकी मिल्कियत से निकल गया, आपने किसी गरीब को दे दिया, मिस्कीन को दे दिया, ज़कात दे दी, सदका खैरात वगैरह, आपकी वो माल अब आपका नहीं रहा, आपने दे दिया उसको, अब आपको उसका सवाब पहुंचेगा। लेकिन ये कुर्बानी की इबादत अजीब इबादत है, पैसा भी खर्च करो, सवाब भी तुम्हें मिले, कुर्बानी कर दो, सारा गोश्त अपने पास रखो, नफा भी पूरा खुद उठाओ और सवाब भी ले लो, मिल्क में रहते हुए ही सवाब मिलेगा आपको, माल खर्च हुआ आपका, वो माल आपकी मिल्क में है अभी भी, और सवाब भी मिलेगा आपको। तो मैं याद करता हूं कि देखिए दूसरी जो माली इबादतें हैं उनमें तो नफ्स रुकावट बन सकता है, अरे भाई कि क्या कर रहा है तू, इतना सस्ता क्यों कर रहा है 500 रुपए का, ये इसकी कोई आइसक्रीम खा लो है, कोई अच्छी सी डिश खा लो। नफ्स और शैतान रुकावट बनकर और ये पैसे जो वो खर्च करने जा रहा था उसको रुकवा सकते हैं, मगर यहाँ अल्लाह ताला ने ये रुकावट भी नहीं रखी, ले मेरे बंदे और तुझे क्या चाहिए। आज अब तो नफ्स और शैतान की भी रुकावट नहीं है कि वो कहे अरे भाई ये क्या कर रहा है, कुर्बानी पे इतने पैसे खर्च कर रहा है, तो तू ये भी कह सकता है कि चलो ठीक है मैं खर्च कर रहा हूँ मगर मैं सारा गोश्त अपने पास रख लूंगा, कोई गुनाह भी नहीं है, मसला मैंने मौलवी साहब से सुन लिया। अब नफ्स और शैतान कुछ कह सकते हैं, अब कहेगा कुछ भी नहीं है, नफ्स और शैतान के पास रोकने के लिए कुछ है अब है, भाई ये तो सारा तो कह रहा है मैं तो सारा गोश्त अपने ही पास रखूंगा, मेरा क्या नुकसान है, पैसे भी खर्च हो रहे हैं, उसके बदले में जो गोश्त है वो सारा मैं अपने पास रखूंगा। अब कोई रुकावट रखी है अल्लाह ने नफ्स और शैतान की, यहाँ नफ्स और शैतान को भी अल्लाह ताला ने बेकार कर दिया बिल्कुल। आप सोचे तो सही कि ये इबादत कितनी महबूब है अल्लाह को, सारी रुकावटें अल्लाह ने हटा दी, नफ्स और शैतान की रुकावटें भी हटा दी। तो ये फजीलत गाइया है कि एक तो फजीलत ये है, आप समझ गए कि दुनिया की गायत के आप पूरा माल इस्तेमाल कर सकते हैं और दे भी सकते, तकसीम भी कर सकते। और आखिरत की फजीलत, आखिरत की गायत क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि समनू वहायाकुम फइन्नहा अला सिराति मताकुम, अपनी कुर्बानी के जानवरों को खूब मोटा ताजा करके कुर्बान करो, खूब उनको चारा खिलाओ, उनकी खूब खिदमत करो, मोटा कर लो उनको खूब खिला खिला कर। सब मीनू बहाया तुम वहा अलग सिराफी मफाया तुम, क्योंकि ये पुल सिराज पर तुम्हारी सवारियां बनेंगी। अब ये हदीस रावी के एतबार से ज़ईफ़ है, रिवायत के एतबार से ज़ईफ़ है, रिवायतन ज़ईफ़ है। लेकिन देखिए, अगर किसी ज़ईफ़ रिवायत की, अगर किसी हदीस को ज़ईफ़ नहीं कहना चाहिए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हदीस का अदब है। एक दफा मैं दो अरबों के साथ बैठा हुआ था, शेख जमाल जमील और शेख अहमद, एक मिस्र के थे और एक उर्दून। शेख जमाल जमील उर्दून के थे, शेख अहमद मिस्र के थे। तीसरा बंदा ये बैठा हुआ था, मैं भी था। दोनों में बहस हो रही थी, मैं भी था। तो ये हदीस ज़ईफ़ है, अहमद ने कहा ये हदीस ज़ईफ़ है और ये हदीस ज़ईफ़ है। फिर शेख जमाल जमील कहने लगे, नहीं नहीं वो नहीं, ये भी ज़ईफ़ है, ये भी ज़ईफ़ है। मैंने कहा हजरत, बात ये है कि हदीस ज़ईफ़ नहीं होती, उसकी रिवायत ज़ईफ़ होती है। हदीस तो वो कौल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, वो ज़ईफ़ हो सकता है? तो शेख जमाल जमील और शेख अहमद की आंखें खुली रह गई, आंखें नहीं झपका रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये शख्स ने बात क्या कह दी, इस अजनबी आदमी ने बात क्या कह दी जिसका अरब से ताल्लुक भी नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद शेख जमाल जमील ने कहा, नाम हादा फी अदब हदीस, कहने लगे बिल्कुल ये हदीस का अदब यही है। अरबों ने भी मान लिया हमारे बुजुर्गों के उलूम को, मेरी क्या बात थी, मैंने तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल कर दिया था। अरबों ने भी माना हमारे अकाबिर के उलूम। हाँ, हदीस ज़ईफ़ नहीं होती, हदीस की रिवायत ज़ईफ़ होती है। हदीस तो वो कौल है हुज़ूर का जो हुज़ूर की ज़बान मुबारक से निकला हो, वो कभी झूठा हो सकता है? वो ज़ईफ़ हो सकता है? हदीस की रिवायत ज़ईफ़ होती है, तो इस हदीस की भी रिवायत ज़ईफ़ है, एक रावी इसमें ज़ईफ़ है। मुहद्दिसीन ने उन पर एतराज किया है। तो बहरहाल इसकी वजह से ये हदीस, इसकी रिवायत ज़ईफ़ है। लेकिन अगर किसी ज़ईफ़ रिवायत वाली हदीस की ताईद किसी कुरान की आयत से हो जाए तो वो उसका ज़ौक दूर हो जाए। ये उसूल है हदीस का, उसूल है फन, हदीस का जो फन है उसका एक उसूल आज आपको बता देता हूँ। किसी हदीस की रिवायत तो ज़ईफ़ हो लेकिन उसकी ताईद किसी कुरान की आयत से हो जाए तो वो ज़ौक उसका दूर हो जाता है, उसका ज़ईफ़ होना दूर हो जाता है और वो काबिले इस्तिदलाल हो जाती है। अब इसकी, इस हदीस की ताईद एक आयत से हो रही है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वल बुदना जानना, ये जो मैंने शुरू में पढ़ी थी आयत, वल बुदना जानना लकुम मिन शाइरिल्लाह, कुर्बानी के जानवर अल्लाह की निशानियां हैं। ये इतने मुबारक जानवर हैं कुर्बान होने वाले, अल्लाह फरमा रहे हैं ये मेरी निशानियां हैं, मेरी निशानियां हैं। और दूसरी आयत में फरमाया, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़्वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों का एहतराम करे, ताज़ीम करे, ये अलामत है इस बात की कि इसके दिल में तक़्वा है। तो जो कुर्बानी के जानवर को का एहतराम करे तो ये उसके दिल के तक़्वा की अलामत है, और कुर्बानी के जानवर का एहतराम ये भी है कि उसको खूब खिलाए पिलाए, ये भी दाखिल है उसमें। लीजिए, आयत की हदीस की ताईद हो गई आयत से। तो आखरत का ये फायदा है कि पुल सिराज पर ये हमारी सवारियां बन जाएंगे। ये आखरत की, ये फजीलत गाइया आखरत की है, और फजीलत गाइया दुनिया की क्या है कि आप पूरा गोश्त भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये आपके सर कोई गुनाह नहीं है। बस ये पांच फजीलतें हैं, फजीलत नौइया, फजीलत जमानिया, फजीलत मकानिया, बानी के एतबार से फजीलत, और फजीलत गालिया। अल्लाह ताला ये पांच फजीलतें कुर्बानी की ऐसी हैं जो सिर्फ कुर्बानी के साथ खास हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस इबादत की कदर की तौफीक नसीब फरमाए, मुझको भी, मेरे दोस्तों को भी। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकअल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।